नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।